साल पर मोहन की सतनी यादा की चर्चा कर रही थी। उसकी टीका का निष्कर्ष ये है जो साल उन्होंने अपने करते हैं, उक्त संपूर्ण कथन में न्याय और युक्ति से एक ही बात सिद्ध की गई है कि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द गंध संस्थान आदि तो पुद्गल के परिणाम है ही, किंतु मूल राग देश सुख दुख आदि भी पुद्गल परिणाम है और इनका कर्ता भोक्ता निश्चय से पुद्गल ही है, आत्मा नहीं। हाँ, आत्मा इनके ज्ञान का कर्ता अवश्य है पर इनका नहीं, क्योंकि ज्ञान आत्मा का ही परिणाम है, इस कारण आत्मा इनके ज्ञान का कर्ता है। इनके शब्द का जो प्रयोग होता है उसे संबंध वाचक के अर्थ में है। वास्तव में ज्ञान इनका नहीं है, ज्ञान तो आत्मा का ही है, लेकिन इन्हें ज्ञेय बनाया है उसने, इसलिए उसे हम इनके ज्ञान ऐसा शब्द का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार यह अत्यंत स्पष्ट है कि अपनी स्वर प्रकाशक शक्ति के कारण ही यह भगवान आत्मा पर को और रागादि भावों को जानता है, और यह जानना उसका कर्म है एवं उस जानने रूप कर्म का वह करता है। मूल का प्रश्न तो यह था कि आत्मा ज्ञानी हो गया यह कैसे पहचाना जाए। इसके उत्तर में 75वीं गाथा में कहा गया है कि कर्म और नौकर्म के परिणाम को जो करता नहीं है मात्र जानता है वह आत्मा ज्ञानी है। और इसमें एक ही बात है कि उस परिणाम को जानने के कारण वो ज्ञानी हो गया क्या। अपन तो ये कहते हैं कि ज्ञानी का मतलब सम्यक दृष्टि से है, अकेला जानने वाला नहीं है, तो उससे तो उसने अकेला उस परिणाम को जाना, जानने से ज्ञानी कैसे हो गया। क्या आत्मा के अनुभव के बिना भी वो ज्ञानी हो सकता है, तो अपन तो स्पष्ट कहेंगे नहीं हो सकता है, माने उस कर्म को जानने मात्र से वो ज्ञानी नहीं हो सकता। और इसलिए जैसेनाचार्य ने गाथा का अर्थ किया तो उन्होंने इसमें इतना शब्द और डाल दिया कि समाधिस्त, ऐसा जानकर समाधिस्त आत्मा ज्ञानी। मैंने वो बात उनको भी खटकी थी कि अकेले उन कर्म नो कर्म को जानने से ज्ञानी कैसे कह दिया। और इसके बाद उन्होंने एक गाथा और लिखी जो अमृतंदाचार्य की टीका में नहीं है पर जयसेनाचार्य की टीका में। उस गाथा में मूल गाथा से तो ये बात भाव निकलता नहीं है, तो उसकी जो टीका लिखी तो उसमें भी उन्होंने वो एक बात डाल दी, आत्मा का अनुभव करता हुआ वो ज्ञान। अब अपन ने कल बहुत विस्तार से जो लंबी चर्चा की थी, जो बीच में ऐसा भी लगने लग गया था ये बातें कहां से आ गई, लेकिन वास्तव में अपन ने यही सिद्ध किया था, वो कर्मभरी प्रजा की चर्चा आ गई थी ना, तो करता नहीं है, करने का भार जब तक इसके माथे पर रहेगा तब तक आत्मा का अनुभव नहीं। तो जो पूरा परब्रह्म का कर्ता नहीं है मात्र ज्ञाता है, इतना इसको निर्णय हो जाएगा विकल्पात्मक ज्ञान में, तो इसकी दृष्टि पर से हटकर स्वभाव के सम्मुख जाएगी जाएगी और जाएगी, तो इसमें से वो आत्मानुभव पूर्वक जानता हुआ आत्मा। इसके लिए वो सारी रामायण अपन ने इतनी लंबी गाई थी कि हर तरह का भार माथे से उतर जाना चाहिए, इसकी बिल्कुल सहज है समझदार में कहे बनारसी सहज का धंधा, आत्मा का अनुभव सहज का काम है, और वाद विवाद करे सो अंधा, और जो वाद विवाद करेगा वो अंधा। खोजी जीवे बाजी मरे ऐसी सांची कहवती है। लोक में एक कहावत प्रसिद्ध है कि जो खोज करता है वो प्राप्त करता है, जिंदा रहता है, और जो वाद विवाद में उलझ जाता है वो मृत्यु के बाद। यानी वाद विवाद में मत पड़ो, तुम तो आत्मा की खोज में रहो। तो आत्मा की खोज में रहने का एक ही उपाय है कि आत्मा को निर्भर हो जाना चाहिए, और निर्भर होगा वस्तु स्वरूप के आधार पर, और वस्तु स्वरूप ये है कि तुझे पर में कुछ भी नहीं करना है, पर का तुम कुछ करता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कर तो सकता है लेकिन करना नहीं। अब हमारी उपदेश की भाषा में ऐसा आता है बार बार के हमें पर में कुछ नहीं करना है, छोड़ो पर की विकल्प छोड़ो, पर की विकल्प छोड़ो, इसका मतलब करना नहीं है। मैंने कर तो हम सकते हैं, हम कर ही नहीं सकते कि हमारे अंदर में भाग नहीं होता। देखो इस सज्जनों को हम पूरे सुनते हैं तो कोई शत्रु है उस पर आक्रमण करे, सामने से वो गालियां दे रहे और वो बिल्कुल शांत बैठा है, तो उसको भी ये भ्रम हो जाता है, जगत को तो होता ही है कि देखो मैंने कुछ नहीं किया, वो इतना बचता रहा लेकिन मैंने जवाब तक नहीं दिया। गालियों की भाषा में जवाब देना तो बहुत दूर की बात है। अब ये सोच के वो अपने को महंत बड़ा आदमी मानने लगता है, लेकिन वास्तव में स्थिति क्या है कि वो गालियां दे रहा है और लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, क्या तुम कुछ कर सकता था? ये निर्णय पूर्वक नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ इसलिए उसे कुछ करने का विकल्प खड़ा नहीं होना, ये अलग बात है। और मैंने गम खाई, मैंने अपने गुस्से को पी लिया, ये बात अलग है। बहुत से लोग कहते हैं अरे देखो भाई मुझे उसने अगर तुमको बहुत गालियां देता है, तुम्हारी बहुत आलोचना करता है, अरे साहब वो कुत्ता कुत्ता नहीं, तो जब हाथी निकले तो उसके पीछे भौंके नहीं, और वो हाथी हाथी नहीं तो कुत्ते को देख कर भौंके रद कर दिए। ऐसा कह के बड़ी सज्जनता से अपने को हाथी और उसको कुत्ता बना, कुत्ता बनाने गाली तो दी है ना सभ्यता पूर्वक, कह नहीं सकते हैं कि आपने गाली दी, लेकिन एक कहावत कह के गाली ही तो दी है, लेकिन वो गाली देने में हुआ क्या? तो उसको कुत्ता बनाने में खुद को हाथी बनाना पड़ा ना, हाथी भी तो त्रेंच है ना, तो पशु है ना, तो तेरी मनुष्यता तो उसी वक्त छूट गई। उसको कुत्ता बनाने में खुद को हाथी बनना पड़ा कि नहीं? मैंने वो उसकी जो शांति है उसका जो जवाब नहीं देना है वो किस चीज के आधार पर रहा है? मैं दे सकता था और मैंने नहीं दी, ये मेरी महानता इस आधार पर रहा है कि मैं उसके जवाब में कुछ कर ही नहीं सकता हूं। अब यदि कदाचित उसकी गालियां सुन के और ज्ञानी को भी गुस्सा आ जाता है, आ सकता है, और वो भी एक की दो सुना दे, तब फिर वो महात्मा पर की गद्दी से उतर जाता। तो पहले देखो मैंने नहीं कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, और अब दुनिया भी नहीं मानती, वो तो सफेद शासन समान कर रहे थे, वो दो ही भोगी है क्या? ऐसी बात करने लगती है एक मिनट में, और हमें भी ये महान पर नहीं आता कि मैं कम नहीं खा पाया। लेकिन यदि तुम्हें वस्तु का सही परिस्थिति का ज्ञान है तो तुमने गालियां का जवाब कुछ नहीं कहा तो भी कोई आश्चर्य नहीं हुआ तुम्हें, क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं भाषा का वर्णन का करता ही नहीं हूं, और वो गालियां निकल भी गईं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा किसी अंदर शांति में, कोई अभी क्षणिक पर्याय में उद्वेग आ गया, ऐसी भाषा का प्रणमन होना था तो हो गया, जाने उसे भी जान लेता है क्या? नहीं दिया जवाब इसे भी जान लिया, तो दे दिया जवाब इसे भी जान लिया। ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ पूरा सिद्धांत नहीं है, ये वास्तविक जीवन की एक बात है। हम रोजाना हम देखते हैं कि ये आदमी एक आदमी क्या तो एकदम मन मार के रह जाता है, एकदम अंदर दबा के कभी घुटता रहता है, और बाद में यदि कोई बन लेता है कोई पछताता है, अरे मैंने बेकार कह दिया, हम मेरे नाराज हो जाएंगे, उससे मेरा ये नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसमें भी घुटता रहता है। उसे तो घुटना है, जवाब नहीं दे तो भी घुटना है, और जवाब दे दे तो भी। ज्ञानी का जवाब नहीं दे तो भी कुछ नहीं है, और जवाब दे दे तो भी कुछ नहीं है। क्योंकि एकदम क्रोध की आग में जल रहा था, उसमें और क्या हो सकता था, ऐसे व्यवहार के अलावा और क्या हो सकता था, इस सोच करके कुछ रिएक्शन नहीं है। और इधर भी आ गया तो मेरे भी उस वक्त क्षणिक विचार की आग में जलने लगा, मेरे से भी ऐसा हो गया, झगड़ा कर दिया। अब वो पश्चाताप होना चाहिए, क्या क्या पश्चाताप, कैसे पश्चाताप, भाई वस्तु का जो स्वरूप है ना वो जान लिया, इसमें क्या वस्तु का स्वरूप है, बोलो तुम्हें। जिस भूमिका में हम हैं उस भूमिका में ऐसा हो जाना सहज है, ये वस्तु का स्वभाव, पर्यायगत योग्यता का क्या स्वभाव हमने जाना, कि जिस हमारी जिस भूमिका में हम जिस भूमिका में है मल्लिकों हिंदुस्तान में, तो उसमें ऐसा क्रोध आ जाना कोई असंभव नहीं है, उसे भी जान लिया। अब वो तो उस वक्त आ ही गया, और आके आ गया, आके चला गया, और अब तुम हम और रोते हैं, अपना समय और खराब करें तो अपने काम में लग जाए ना, अपना काम मन स्वाध्याय अध्ययन मनन चिंतन जो भी तुम्हें करना है आत्मा के कल्याण का उपयोग को उसी में उलझाए रखना रमाए रखना, इससे क्या लाभ है, उपयोग को लंबाने से क्या लाभ। देखो तो अगली गाथा की अपन ने चर्चा की थी ना, कोई गाथा भी पढ़ के सुनाते हैं आपकी पहल पेज पर 150 पेज पर 150 पेज पर। कत्ता आदा भन दो मैं कत्ता केण सो उबाएने धम्मादी परिणामे जो जान सो हवदीनानी रागा। अभी तो ये गाथा के अर्थ में भी कहीं भी ऐसा संकेत नहीं है कि वो आत्मा का अनुभव की बात आई हो, नहीं है ना, किसी एक नए से अर्थात व्यवहार नए से कह आत्मा पुण्य रूप धर्म भावों को वह धम्मादि धम्मादि दृढ़ नहीं लेना, पुण्य रूप धर्म भाव ये सब टीका में नीचे जैसे ने लिखा है, अर्थात शुभ भाव रूप रागादि भावों का कर्ता कहा जाता है, परंतु निश्चय ऐसे इन भावों का कर्ता नहीं है, जो व्यक्ति यह जानता है वह ज्ञानी है, इसमें आत्मा के जानने की बात नहीं है। ठीक है, यह गाथा पुण्य पापादि विकारी भावों का कर्ता भी है, यह आत्मा पुण्य पापादि विकारी भावों का कर्ता भी है और अकर्ता भी है, यह सब नए विभाग से है, क्योंकि निश्चय में से अकर्ता है और व्यवहार में से करता है। अभी तो रागादी भावों का व्यवहार में से करता और बता दिया है टीका में। इस प्रकार ख्याति लाभ पूजादि समस्त रागादी विकल्पमय औपाधिक परिणामों से रहित समाधि में स्थित होकर जो जानता है वह ज्ञानी होता है। इस टीका में गिर गया हूँ, गाथा में रवि संकेत है, तो वो इसीलिए हरेक को ही कुछ मिलाया कोई उसको इलाज को जानो आत्मज्ञान हो जाए। अब मान लो कि अमृतचंदाचार्य ने जिन किया है तो उन्हें अभी सुनी है क्या, या क्या जैसे उनसे ज्यादा महान थे यदि हम गंभीरता से सोचे तो अब मैं दूसरे पक्ष को रखता हूँ, थोड़ी बारीक बात है लेकिन कि यदि हम ज्ञानी की परिभाषा ये बना देते तो आत्मानुभूति पूर्वक जानता है, तो जब वो आत्मानुभूति नहीं कर रहा है तब वो ज्ञानी है। थोड़ा अपने शाम तो है, आत्मानुभूति छह महीना में एक दफे होती है, कई विकास विकास समय बहुत अल्पकाल है उसका, तो बाकी के समय वो ज्ञानी है कि नहीं है। और उसको तो जान ही रहा है ना, जो राग हो रहा है, जो गुस्सा उसे आ रहा है, उसको तो जान ही रहा है। तो वो जो ज्ञानी की परिभाषा वो पूरी घटित नहीं होती उससे। तो वो न्याय के बहुत बड़े विद्वान थे कि भले ही न्याय बता दें और व्याकरण बता दें। इसका मैं एक बहुत बढ़िया उदाहरण आपको देता हूँ जो बिल्कुल आपने पढ़ा है लेकिन उस बारे में अभी तक कोई सोचा नहीं होगा। खेड़ाला में पढ़ा है कि प्रथम नरक दिन शत्रु ज्योतिष बाण भवन समय नाम, इन इन गतियों में सम्मा ऋषि जी नहीं जाते। और रतन शास्त्राचार में लिखा है तो उन्होंने लिखा सम्यक दर्शन सुद्धा नारक त्रयंत, वहाँ पूरे छह निशाते नरक लिख दिए। अभी मतभेद हो गया तो अपन कहीं वो समझ में कार्य ने सम्मान से लिख दिया, गौरव जी ने एक गौरव प्राणी ने जरा और खोल दिया, मतलब बात कौन सी सत्य है बोलो। नरक में नहीं जाता कि छह नरक में नहीं जाता पहले नरक को छोड़कर, पर गौरव प्राणी थोड़े बड़े दिखने लग गए। तो और कम शब्दों में और उन्होंने ज्यादा स्पष्ट बात उन्हें बताई। अब मैं कहता हूँ ऐसा नहीं, समंत भद्र जैसा तार्किक विद्वान जिन्होंने न्याय शास्त्र की स्थापना की है वो कैसे लिख सकता था पहले नरक में जाकर, क्योंकि सम्मा दर्शन होने के बाद नरक गति का बंध ही नहीं होता, नरक आयु का बंध ही नहीं होता, इसे सम्मा ऋषि जाते ही नहीं। आप समझ नहीं लगा तो वो जो करुणानियों का नियम है तो चौथे पहले गुणस्थान से निकलते ही चौथे गुणस्थान में आते ही एक 41 व्यक्तियों की बंद स्थिति हो जाती है ना, और उसमें नरक गति और नरक आयु भी है, तुरंत गति और तुरंत आयु भी। तो बुद्ध ने अपने उस नियम के अनुसार वो बात बताई। ये जो अपवाद है कि पहले नरक में राजा समय चले गए, ये तो बात है कि जब वो सम्मा दृष्टि नहीं थे तब उनमें वो आयु कर्म बांधा था, क्यों तो वो सम्मा दृष्टि को तो नहीं हुआ ना उसका बंद, तो नियम तो वही सही रहा है ना समुद्र भद्र का, तो समुद्र भद्र ऐसी लिख करके फिर अपने कर्णानियों से क्यों टकरा दो। तो अभी क्या रहा है कि दलित राम जी ने गलती कर दी, हमें तो गलती ही गलती है, खोजना है कि हमने करी हमने करी हमने करी हमने करी। अरे भाई वो तो साधारण अत्यंत संक्षेप में साधारण बालकों को अपनी बात सिखा रहे, तो अभी आलम को विकल्प खड़ा हो जाएगा कि राजा सैनिक तो गए, तो उनने वो अपवाद नियम को उसमें शामिल कर दिया बस खत्म कि आयु पहले बन गई हो तो मेरे समझ नहीं है, लेकिन वो स्पष्ट तो खोला नहीं। तो दोनों की अपेक्षा समझना चाहिए, उन्होंने अब बात को खोल दिया, उन्होंने अब बात को खोलना हो तो नहीं समझा, ऐसे ऐसे अब बात खोलने लग जाए एक एक चीजों हजारों अब बात होते हैं। जैसे जैसे आपने मान लीजिए मुनि धर्म का सभी बंद होगा, अब उसमें कहीं लिखा है कि मुनि अत्यंत बीमार हो जाए, टांग में बहुत जोर की चोट लग जाए और वो जंगल में तो पड़े नहीं रहेंगे तो कदाचित डोली में भी जा सकते हैं, क्यों अब हम लोग जी हम व्याख्यान देने में वो पैदल चलते हैं, सवारी का त्याग होता है, ये नियम को तो बताए नहीं और डोली डोली कब वो अखबार को बताते सर, और वो आराम से डोली में चले मीनों पर जाए चार धाम शिखर तक यहाँ जयपुर से और कहीं लिखा है ना तो वो तो अब बात का तो मतलब होता है कि ऐसी किसी विचित्र परिस्थिति बन जाए लाखों में एकाध केस हो राजा सैनिक का जैसा हुआ है समझाए ना वो सामान्य नियम नहीं है, है? और हम उस सारे नियम को सब जगह से लगा करके और इसमें लगाने लगाए तो अब बात को इतना मुख्यता कर दे कि मुख्य नियम ही खत्म हो जाए और सब महाराज देवियों में ही चलने लगे। मैं अमेरिका में जाता है तो वहां पर बहुत से स्वतंत्र साधु भी जाते हैं और वहां पर मिलते हैं बहुत वो लोग इस मामले बहुत चतुर हैं, मीठा मीठा बोलने में सबसे बहुत अच्छा व्यवहार करने में खाने बहुत प्रेम से बोलते हैं बड़े सम्मान के साथ बैठा ले गुरु जी। तो जो बैल था वो जमाना था जब घोड़े पे बैलगाड़ी में बैठते थे सवारी में तो बैलों में ज्यादा बोझा ढोते थे रास्ते सही थे नहीं लंबे से मार मार के भगाते थे तो पशुओं को कोई तकलीफ नहीं हो इसलिए सवारी का त्याग था। अब तो गाड़ियां पैसों से चलती हैं अब किसी को तकलीफ होती नहीं है अब इसमें बैठने की क्या मतलब और फिर आदमी की डोली में बैठने से क्या मतलब क्यों तो अपवाद में आदमी की डोली बैठने की क्यों रखा तो फिर टांगा में बैठने की क्यों नहीं रखेंगे तो उनको असर के लिए गहरा टांगा में कैसे लग रहे। मैंने कहा कि नहीं महाराज ऐसा नहीं है मैं भी बहुत प्रेम से शांति से बोलती हूँ अपनी बात समझाता हूँ क्योंकि मुनिराज इंडिया समिति पूर्वक चलते हैं यदि वो बैलगाड़ी में घोड़े पर बैठेंगे तो घोड़ा तो इंडिया समिति पूर्वक चलेगा नहीं तो उनकी इंडिया समिति भंग हो जाएगी अब आपकी मोटर कार दौड़ती है 100 किलोमीटर की रफ्तार से तो वो ड्राइवर तो कम से कम 100 फुट आगे देखता है नहीं तो एक्सीडेंट हो जाए ना। आप भी साइकिल चलाते हो तो कहते सामने देखो पहिए के पास नहीं जाओ अगर कोई आ जाए पैर रख कर पैर रखने के पहले जिस जहाँ जमीन पे पैर रख रहे उस जमीन को देखते है ना तो वहाँ साइकिल का पहिया जहाँ जा रहा है जमीन को देखते हो तो वो तो देखते ही नहीं है उसमें तो ठिकानियां बड़े बड़े मर जाते हैं पशु वो सब इसलिए बताते हैं उसको मर जाने के लिए नहीं बताते हैं कि हमारा एक्सीडेंट हो जाए। यदि हम जाके किसी गाड़ी से टकरा जाएंगे तो हमारी गाड़ी उलट जाएगी लेकिन कोई जीव बचाने के लिए थोड़ी होता है प्लेन में तो साबो है ही नहीं जमीन में चलता ही नहीं है फिर आकाश में जीव नहीं है क्या चलते हैं पंखे चलते हैं जो सी ताल है ऐसा करके अरे आप तो ऐसी बातें करने लगते हैं साथ साथ आपके जैन साधु भी हमने देखे हैं साथ डोली में जाते हैं। मैंने कहा देखो वो तो अब्बास नियम है और वो जाएंगे तो मनुष्यों की डोली नहीं जाएंगे क्यों क्योंकि मनुष्य क्रिया समिति पूर्वक चल सकता है डोली में बैठेंगे तो डोली वाले कहार में से कहा जा सकता है भैया चार हाथ देने देखे तुमने घोड़े से नहीं कहा जा सकता बैल से नहीं कहा जा सकता ऊंट से नहीं कहा जा सकता है कार में नहीं हो सकता है। आप लोग सोचते हो की बात है दौलत राम की बात है कि हम तुम्हारी उम्र गए तब से ये बातें सोचती उल्टा सीधा दमाग चलता था ना तो कुछ ना कुछ उसमें ठीक है जब सर्वलाकार बड़ा था चढ़ाला बड़ा था ना तभी ये बात ख्याल में आ गई थी और अपने तरफ ही दिमाग में सोच करके कभी इन दोनों में अंतर क्यों है और ऐसा क्यों है और महान कौन है मानी समंत बद से महान दौलत राम को मानने को मन नहीं हुआ तैयार तो उसमें से फिर एक बात निकाली ऐसे ही उन्होंने बैठ के कह दिया कि हम सवारी में नहीं बैठते हैं ना तो उस वक्त ही तत्काल सोच के इनको जवाब दिया कि नहीं वो सही नहीं आप कोई नहीं कर सकते हो तो अलग बात है लेकिन जैन धर्म का नियम है यदि आप सीतांबर समाज में ईए समिति गुरु चलने का ईए समिति है तो आपकी ईए समिति भंग ये आपको मानना ही पड़ेगा। अब आप माने नहीं माने आप जो क्या करें वो आपका सोचने की बात है लेकिन गलत तर्क से अपने बात की सिद्धि तो ऐसी बात यह है हमने चलने जयशैन में मेरा मन कभी भी जयसेन को ऊपर मानने को नहीं, इसलिए नहीं कि जयसेन से मेरे को कोई बैर वजूद है और नहीं से कोई रिश्तेदारी है, लेकिन जब गहराई में जाके देखते हैं तो वो बात एकदम तर्क से ख्याल में आती है। तो अब्बाज है वो, तो वहाँ पे ये बताना है सिर्फ कि वो कर्ता कर्म की बात चल रही है, तो पर का वो कर्ता नहीं है, पर मैं नहीं हूँ, पर मेरा नहीं है, पर का मैं कर्ता नहीं हूँ, पर का मैं भोक्ता नहीं हूँ, और मात्र जानता हूँ, तो इतनी बात बताना है और इतनी जाने तो वो ज्ञानी है। और जो वो नियम है वहां पर समझने की प्राप्ति का, वो तो उसी तरीके से आत्मानुभूति पूर्व का ही होगा, लेकिन वो कैसा जानते हुए ज्ञानी रह सकता है, ज्ञानी होना, उत्पन्न ज्ञान का उत्पन्न होना, उत्पन्न होना और होना, इन दोनों में फर्क है ना। ज्ञानी कौन है? अब प्रश्न तो उस पर के संबंध में चल रहा है, तो साहब आत्मा खाता है कि नहीं खाता है, प्रश्न तो यही चला रहा है साहब, जिस दिन बात हो उस दिन नहीं खाता है, तो ये प्रश्न का जवाब हुआ। हमारा तो ये हमको तत्व निर्णय करना है कि आत्मद्रव्य भोजन की क्रिया रूप परिणमित होता है, जड़ की क्रिया है, तो राग जड़ की क्रिया है, उससे ज्यादा जड़ की क्रिया तो आहार है ना जो हम दबाते हैं, तो उस क्रिया का कर्ता भगवान आत्मा है कि नहीं है, तो कहेंगे जैसे न कर कहेंगे निश्चय नए से नहीं है, व्यवहार नए से है, यही कहा ना। और अमर चंद्राचार्य ने कह दिया नहीं, तो सही बात नहीं, व्यवहार से तो है। अरे भैया अभी यहाँ यहाँ व्यवहार दिखा दोगे तो निश्चय नये में वो जड़ता नहीं है, हम बताना चाहते करता नहीं है, और तुम्हारी दृष्टि वहां से हटाकर अपने आत्मा पे ले जाना चाहते हैं, और तुम साथ में एक नये से करता है और एक नहीं, दोनों बराबरी आधा आधा कर दिया, तो 50% जोर खत्म हो गया ना। किसी नये से तो करता है ना, पूरा अकर्ता थोड़ी है, तो वो अकर्ता पे जो पूरा जोर आना चाहिए था वो नहीं आया ना, तो गौण का हुआ वो, ये तो प्रमाण बात हो गया, कौन सा प्रमाण बात हो गया कि निश्चय ऐसे करता नहीं है और व्यवहार ऐसे करता है, ये प्रमाण बात हो गया। और नए वाक्य क्या होता है, करता नहीं है, निश्चय ऐसे करता नहीं है, नहीं सुने ना, आत्म परिणामों का करता है और पर का नहीं है, ये निश्चय करता, तो व्यवहार को भी तुमने बराबर ही वही खड़ा कर दिया, करता है भी नहीं भी, ऐसा मैं आपसे पूछता हूँ, हमें ये काम आपको करना है कि नहीं करना, कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, तो आपको नहीं लगता है कि हमने कोई आपको बताया है रास्ता, आप जैसा प्रश्न लेके आए थे हमने वैसे कर दिया आपको, कि नहीं नहीं बात कर देना तो पानी भी नहीं पीना, ऐसे बोलना चाहिए नहीं नहीं बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं पी सकते हैं, सभी बात मार्गदर्शन तो तब कहलाएगा ना, मार्गदर्शन कब कहलाएगा, जो कभी तो दोनों नयों को एक साथ कहना वो प्रमाण का वचन है, तो एक नये को कहना, तो गुरुदेव तो ऐसा बोलते थे कि ऐसा है और ऐसा नहीं है, आत्मा ज्ञान का करता है, राग का करता नहीं है, ये अनेकांश हो गया, ज्ञान का भी करता है राग का भी करता है, तो करता है भी है करता भी है, ये नहीं। अब देखिए जो बन्ने गाथा में पढ़ा है उसी बात को इनने कलश में बिल्कुल रिपीट कर दिया है, ये कलश इतने इतने सुंदर हैं कि मैंने स्वयं कलश प्रदानवाद किया और मुझे जितना अच्छा कलश प्रदानवाद लगता है उतना अच्छा गाथा प्रदानवाद नहीं लगता, और मैं कलश प्रदानवाद को जितना तन्मय होकर सुनता हूँ उतना मैं गाथा के प्रदानवाद को तन्मय होकर नहीं सुनते, लेकिन मैंने देखा कि जब भी गुरुदेव के प्रश्न हुए तो उनके गाथाओं पे टीका पे बहुत बहुत 10-10-20 पेज लिखे, और कलशों में कभी एक दो पेज नहीं देख कर नहीं निकलूंगा, हाँ जी, तो मेरे चित्त में इस बात को बहुत प्रश्न खड़ा होता है, कितने बढ़िया सन्न है, कोई उनको इतनी जल्दी फटाफट में वैसे सत्य में मिटा दिया। लेकिन जब मैंने स्वयं के अनुशीलन लिखा, टीका लिखी, तो मेरे से भी वही हुआ। तो कलश में कोई एक पेज से दो पेज में नहीं गया, तो टीका वो बोल, इसका क्या कारण है? दिमाग में आई जाते, उसका कारण दादा ये है कि वो जो सारा मान जो टीका में पहले कह चुके हैं और बाद में कलश में वही बात रिपीट करते हैं। गद्य में टीका में वही बात बिल्कुल कह देते हैं, बिल्कुल उन्हीं अक्षरों में, और फिर उन्हीं अक्षरों को बिल्कुल पद्य में मान देते हैं। अब उसने कुछ कहने को रहा ही नहीं। वही गोदाम में और बताता हूँ आपको, इसकी बात समझ में दीजिए। ये उदाहरण में कोई कहानी किसी वाले उदाहरण नहीं है, लेकिन जिस तुम्हें तर्क से ख्याल नहीं आया, तुमने महापुराण पढ़ा, पढ़ने की बात को बहुत दूर जाने दो, देखा है ना महापुराण मतलब इसके दो भाग में, एक आदि पुराण और एक उत्तर पुराण। जिनसेनाचार्य ने आदि पुराण लिखा था और उनका बीच में स्वर्गवास, तो उनके शिष्य जो गुरु भद्राचार्य थे जिन्हें आत्मानुशासन लिखा है, उन्होंने उसे पूरा किया महापुराण को, तो 22-23 संख्याओं का चरित्र उन्होंने। इस तरह वो महापुराण दो आचार्यों के द्वारा बनाया गया है, कौन जिनसेनाचार्य और गुरु भद्राचार्य। अब वो आदि पुराण है मान लीजिए 1000 के लिए, और उत्तर पुराण है 400 के लिए, 23 तीर्थंकरों का वर्णन तो हो गया 400 पेज में, तो एक तीर्थंकर का वर्णन 1000 पेज में। अभी ये बात क्या है, ये कोई अनबैलेंस नहीं है सर, ये तो आप पढ़ोगे तब आपको अंतर्मानी ख्याल में आएगा, वो भी ख्याल में आएगा कि आप थोड़े ही साहित्यिक हैं, थोड़ी भी आपको विद्वा है, तो लेकिन ये तो बिना ही पढ़े मैंने कहा देखा, देखा उत्तर तो इतना सा वहां पर उसमें कई चीजें जगह करे तो सही थी, मैं चार चार पांच पांच छह से आठ आठ दो महीने की चीजें जगह करे, तो एक तो ये हो गया उसका अर्थ कि वो बस उन्होंने तो खाना पूर्ति की, वो उत्साह उनको था गुलशन को लिखने में, और एक एक चीज पर जिस दिन गहराई से वे गए, ऐसा थोड़ी भरत चक्रवर्ती के बेटे थे, बाकी के तीर्थंकरों के बेटे नहीं होंगे और उनके भेद नहीं होंगे, ये नहीं होंगे और सब बातें नहीं होंगी, सब बातें है ना, लेकिन बराबर करके मिलता है, तो उन्हें तो उनको महाप्राण पूरा हो गया। लेकिन जो गुणवत्ता खुद की कृति है अपना अनुशासन तो देखो उसमें वो खिलते हैं, एक बात। अब दूसरी बात फिर मैंने सोचा, लेकिन जो ये सोचा तो ये फर्क है जो पंडित तोरण जी ने मौसमार प्रकाशक लिखा है, अब वो अधूरा रह गया, तो शीतल जी ने शीतल प्रसाद जी ने कहा हम पूरा कर देते हैं, और उन्होंने फटाफट पूरा कर दिया। अब वो कोई नाम भी नहीं जान पा उसको, किसी ने पढ़ा भी नहीं है तुमको, अभी मैंने रिसर्च किया तब बताया कि यदि ये पूरा ग्रंथ होता तो 5000 पेज से कम का नहीं होता, और उसमें क्या क्या होता वो मैंने इसमें मत्ता बना के बताया है, देखा ना आप लोगों ने क्या क्या होता और उसमें कितना हिस्सा आया और कितना बाकी है, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये इतना बड़ा होता, और उन्होंने 200-300 पेज नहीं पूरा कर दिया, तो दस ही हो गया ना उसको कहेंगे। अब एक तरफ, अब दूसरा, यदि जिनसेनाचार्य पूरा महापुराण लिख लेते तो वो उत्तर पुराण कैसा होता? वो उत्तर पुराण कैसा होगा? क्या जैसे वो 1000 पेज का है
तो 23,000 देव का होगा देशी जंगलों का,
क्यों नहीं होता?
क्यों इसलिए नहीं होता कि जन्म कल्याण, गर्भ कल्याण, दीक्षा कल्याण, केवल ज्ञान कल्याण, मनुष्य कल्याण, तो सब चीजें करेंगे एक सही है। वही पांडु शिला, वही इंद्राय, वही इंद्राणी, वही वो पालकी में उठाऊंगा, वही देवों का राजाओं का झगड़ा, तो वो घटनाएं जो पांच कल्याणक की हैं, वो तो एक से ही रिपीट होती ना, किसी भी का पंच कल्याणक हो जाए तो एक दफे उसका बहुत विस्तार से वर्णन कर चुके हैं पांडव शिला पर उनका, तो अब दूसरी दफे यही तो कहेंगे जैसा हमने आदिनाथ का सुंदर वैसे ही तो इनका भी तो बन गया ना। 24 बार उसी को वर्णन में नया नया क्या कर देते, तो फिर वही के वही रिपीट कर देते, तो उनका भी इतना बड़ा तो नहीं। अभी गुरु भद्र आपको वो हल्का नहीं लगा ना, तो वो तो वस्तु बता रही है, वस्तु की वजह से ऐसा हुआ। महाकाव्य का एक नियम है कि उसमें एक राजा का वर्णन नक्शे शिक्षक होना चाहिए, एक रानी का वर्णन होना चाहिए, एक नगर का वर्णन होना चाहिए, ये सब चीजें फिक्स हैं, ये भी नक्की है। तो तीर्थंकरों का बड़े लोगों का होगा तो पैर के नाखून से शुरू होगा और माथे की चोटी तक आएगा, ऐसा होगा। और कोई साधारण आदमी का होगा तो ऊपर से शुरू होगा और नीचे शुरू, चोटी कैसी थी, अब चोरा कैसा था, तो गला कैसा था, सब एक दफे नर देवी का वर्णन कर दिया। अब जैसी आदिनाथ की पत्नी नर देवी कितनी सुंदर थी, आदित्यनाथ की अम्मा उसे कम सुंदर थोड़ी थी। अब नक्शे के बारे में 24 दफे कैसे करें और उसमें क्या नवीनता लाए, यानी वो भी कौन सी जो बातें थी, वो भी जो पंच कल्याणक की थी और नगर वर्णन नक्षिक वर्णन इनकी भी वही थी, अब क्या करें। तो फिर और ज्यादा बड़ा कैसे किया जा सकता है, मतलब उसमें है ना तुम्हारी ये शक्ति। अरे भाई उनकी शोभे के थोड़ी होंगे, उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं करते, उनके नाम तो अलग होते, उनकी घटनाएं भरत भोग बाहुबली लड़े थे ऐसी थोड़ी होगी, तो दूसरे टाइप की घटनाएं होंगी ना, जो आदमी का तत्व तो एक से ही थोड़ी मिलता है, मेरा मतलब सुनिएगा ना। तो माने चच्चा तेल में ही निपटारे ऐसा भी नहीं है, यदि थोड़ी गहराई में जाते तो कम से कम दो 100 पेज के तो बन ही जाते, 23,000 पेज में तो 2300 पेज तो हो ही जाते, समझे। तो वो बात भी सही है, वो खुद की बात होती है जो उनके दिमाग में होती है वो अलग है और दूसरे की होती है अलग है। जब भी लोग मेरे से भी कहते हैं साहब आप गोदम जी का मुख्यमंत्री से पूरा कर दो, आपने मिशन तार तक दिया है, क्या क्या होता है इसमें, ये सब किया है आप कर दो, अरे भाई हम नहीं कर सकते हैं, वो उनके चित्त में क्या था, क्या क्या उसमें लिखना चाहते थे, तो हमको मन पर ज्ञान थोड़ी है, क्योंकि हमें पता है कि नहीं हम लिखेंगे तो वो टोडर मन का पूरा नहीं होगा, वो हमारा ही बन जाएगा। और इसलिए जो लिखना है हम सुबह का ही लिखे ना, इसमें क्या फर्क पड़ता है मोक्ष मार्ग से पूरा हुआ कि नहीं हुआ। हम मान लीजिए कि आप कहो कि आप लिखते उन्होंने धर्म के दर्शन की किताब लिखी, बस जो अपने है ना तत्वा सूत्र में एक सूत्र है कौन सा गुप्ति समुखी परिचय जय अनुचेता परिचय जय तारी, तो हमारे दिमाग में इसमें से पांच चीजें गुप्ती समुखी धर्म अनुप्रेक्षा और परिचय जय, तो धर्म बस धर्म और 12 भावना अनुपेक्षा है, इनका हमने 2 किताबें लिखी तो एक एक सूत्र में 6 किताबें हो जाती हो जाती कि नहीं। अभी गुप्ती समिति पर नहीं थी 200 पेज की, तो 50 पेज की तो लिखी जा सकती है ना। तो ऐसा नहीं है कि वे ज्यादा लिख देते हैं कि हम ज्यादा लिख देते, अरे जिसका जहाँ उपयोग चलता है, जहाँ दिमाग है, जो विशेषता है, वो उसको इसी का आनंद हो, वही किसी का क्यों करे? क्यों सब जैन धर्म का करे ना, अपनी अपनी क्षमता और अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। बहुत से लोग ये कहते मिलेंगे कि हम भी बहुत सोचते हैं कि हम भी किताबें बहुत लिखे, क्या करें, दादा ने सब पहले लिख दिया, बारह आनंद दस धर्म भी लिख दिए और सबकी टीका भी कर दी। अरे भाई आकाश निर्माणी पड़ी है और तू लिखने से क्या होता है? सौ किताबें थी और पहले होती धर्म के दर्शन पे, तो सौ बाद में होती तो भी धर्म के दर्शन की किताब की उपयोगिता होती। यदि तेरे दिमाग में अभी नया चिंतन है उनके बारे में तो तू लिख देना, कौन मना करता? हमने मना किया, फिर हमने लिख दिया तुम मत लिखना। हम तो रोज ही ना प्रेरणा देते सब लिखना सब लिखना सब लिखना। क्यों कोई नहीं लिखना? ये बात कहां से आई है? ये तो धारा है, कहीं चली आ रही है। बहुत से लोग बोलते हैं ये जब भाषण देते हैं ना, अब सब लोगों ने बोल दिया, मेरे लिए बोलने को कुछ बचा ही नहीं है, तो तेरे बोलने की जरूरत ही क्या है? क्या जो सुने खराब करता है? जब वही बोलने वाला था जो सबने बोला है, क्यों? मैं ये कहता हूँ, कहता है मेरे से पहले बुलवाओ, चाहे बीच में बुलवाओ, चाहे अंत में बुलवाओ, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि मैं जो बोलूंगा, कि मैंने जो बोल दिया है वो कोई दूसरा वो ही बोलूंगा जो कोई दूसरा बोलने वाला है ही नहीं। जो मान लो कभी मेरे को बोलने का मौका मिलेगा तो मैं वो ही बोलूंगा, सबसे बाद में बुलवाना, क्योंकि वो कोई बोलने वाला था ही नहीं। वही वही अभूतपूर्व चीज ही बोलेंगे चिंतन से, समझ रहे ना? तो आपके चिंतन से आपको अभूतपूर्व चीज निकल सकती है। हर जगह इधर ऊपर ने कितनी चीजें अभी निकाल के बताई आपको, जहां भी आप सोचने बैठोगे तो वहां उसमें बहुत माल है। पर सोचने में आनंद आना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाय राम जी पिताजी का सुखवास हो गया, वो सोचने के लिए कैसे बचना नहीं। मैं कह रहा गुरुदेव कितने खिलखिला के सुनना प्रफुल्लित होकर के बोलते थे, क्योंकि ये तो एक एक गे जब चित्त में उत्तरायमान होता है ना, तो उसमें कितना आनंद आता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। सारी पचासों बीमारियों की दवाई तो ये है। तो एक एक चीज सोचता है और जो नई चीज ख्याल में आती है ना, तो उसका जो आनंद है वो आनंद का तो नहीं। और हमने 10 साल पहले सोची और 10 साल बाद यदि वो आगम में मिल जाए कहीं लिखी, तो हमें जलन नहीं होती है कि लोग कहेंगे हमने वहां से नकल की है। हमें इस बात की खुशी होती है कि देखो वही शास्त्र में लिखी है और वही हमारे चिंतन में बिना देखे भी वही आई थी। अपनी चीज की प्रमाणिकता ख्याल में आती है। लेकिन जब आप लोग रिसर्च करेंगे तो कहेंगे यही बात तो पंडित हिंदू ने वहां से लिखी है, क्योंकि उनके पहले ये पंडित हुए थे, उनने ये बात लिखी थी। अब इससे उनके दुख दुख आएगा तो तुम्हें किसकी गारंटी, किसका है मार, किसी का नहीं, ये सबका है। किसी घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि नकल नकल के लिए, काय की नकल है? आदिनाथ की नकल आदित्यनाथ नकल हुई गई छोटी, उनको 10 साल से यूनिवर्सिटी से निकाल देने चाहिए था। उनने सात तत्व बताए तो इनने सात तत्व बताए, चौबीसों की संख्या। कोई ने किसी की नकल नहीं की, नकल करने की जरूरत क्या है? वस्तु का स्वरूप है कैसा, भगवान को देख के मैंने कहा सफेद है, अब तुमने देखा और तुमने कहा सफेद है तो मेरी नकल की है। हाँ सफेद को सफेद कहेंगे तो ये कलश में भी बिल्कुल जो टीका में कह दिया वो ही है। पढ़ो ना जाप के दा
कितना स्पष्ट शब्द में लिखा, कर्तृत्व शून्य ज्ञानी होता, कर्तृत्व से शून्य और ज्ञानता होगा। अब वो बराबर एक ही भाव में दोनों को एक सांस में चार नहीं पांच चलते हैं। जब मैंने उसने व्याख्यान दिया था ना, तो वो सुनते साधु थे नाम सभी, वो मेरे घर आए थे साहब, तो पांचों का पांच बुद्धि है, एकत्व बुद्धि, महत्व बुद्धि, चतुर्थ बुद्धि, भविष्य बुद्धि और ज्ञातृत्व बुद्धि। मैं कह लाओ दोनों साथ में, फिर भी हमें तो आपसे सुना क्या है, मुझे पता नहीं है, मैं तो हिंदी मैंने कभी कहा है और फिर भी कभी कह दिया होगा तो मुझे पता नहीं है, मैं भी ना समझ में कह दिया होगा, मैं क्यों झगड़े में पढ़ूं कि कहा गया नहीं कहा। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है जो हम अपने हम नहीं कहते हैं कोई, और अपने आप हमारा दिमाग चार बुद्धि सीखे सीखे तो पांच में भी बुद्धि लग जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बताऊंगा ना कैसे होता है। चलो भैया, जन्म कितने प्रकार, गर्भ गर्भ जन्म कितने प्रकार के होते हैं, जरायु जन्मित प्रोटानम में परमी सूत्र नहीं, सत्ता सूत्र नहीं पड़े, किसने पड़े सत्ता सूत्र पढ़ाने सर ने, अब जो है गर्भ जन्म कितने प्रकार के होते हैं। अब मैं बोलता हूँ ध्यान से सुनना, जरायुज, अंडज और पोतज, ठीक है, कोई गलती निकाल सकता है, गलती है, अब सही बोलता हूँ, फर्क देखना ध्यान से सुनना, जरायुज, अंडज और पोत, कोतज नहीं है, देख लो सूत्र नहीं लिखा करो, जरायुज अंडज पोता नाम, पोत का नाम है ना पोता नाम। अरे तुम भी सारा देश उसे पोतज ही पूछता है, जब वो पोतज नहीं है। अब क्यों नहीं है वो भी समझो, कि वे जरायु है ना, इन जो बच्चे होते हैं ज्यादा, इनके ऊपर एक जाल होता है, तो जाल में बंधे रहते हैं, वो बाहर आकर वो जाल काटते हैं और फिर वो निकालते हैं, और अंडे जो है तो अंडा रहता है ऊपर, लेकिन जिनका पोत जन्म होता है उनके ऊपर कोई आवरण नहीं, शेर का होता है, आवरण नहीं होता, और वो इतना पुरुषार्थी होता है, इतनी ताकत लगा करके अपना बाहर निकल आता है कि माँ की योनि सब विच्छेद हो जाती है। तो पुराने जमाने में कहा जाता था कि शेर के दो बच्चे नहीं होते, हम पहले बच्चे होने में ही सब साफ हो जाता है। तो पोतज नहीं, पोत तो बुद्धिपूर्वक है, सूत्र में भी है और ये भी है, फिर भी दो जा लगते जरायुज अंडज, लगता है कि तीसरे में भी जा तो लगा ही होगा, तो यदि कहीं पोत लिखा होगा तो उन मिटा करके उसे पोतज कर देंगे, करेक्ट नहीं करते। मैंने उनको भी बताई ये बात, मैंने बोलो तो उन्होंने भी बराबर पोतज बोल दिया, तुम्हें कहा निकालो सास निकालो तो बाप निकालो, फिर हमने तो पढ़ा है, तुमने कैसा पढ़ा देखो, आधा हम यहाँ से पढ़ते हैं और आधा यहाँ से पढ़ते हैं, दिक्कत तो ये है, हमारा दिमाग आगे आगे चलता है, वहां देखते ही नहीं है। तो तीन भेद कौन कौन से हुए बेटा, बोलो चलो बोलो, सब एक साथ बोलोगे तो हम पता नहीं पड़ेगा, देखो वो तब ही बोल निकला कभी निकला मुझे, अब भी बताया तो मैंने कहा जैसे तुम जैसे हमसे भी निकल गया होगा, एक आध कौन सा निकल गया होगा, गे गे प्रबुद्धि, लेकिन अभी हम बता रहे हैं ना कि गे प्रबुद्धि नाम की कहीं नहीं कोई चीज नहीं है, वो कोई वो तो अपराध है, वो तो मिथ्यात्व है, जानना अपराध नहीं है, कर्तापन तो व्यवहार से कहा है, और क्या बोलते थे कि कहना तो व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है, ऐसे ही पर को जानता है आत्मा, कहना तो व्यवहार है और मानना मत है, कैसे बोल दो मेरे घर पे आके बहस करी मेरे, ऐसा ऐसा बहुत है, बहुत होता है, इसमें जब तक उपयोग की शुद्धता से खुद विवेक नहीं लगाओगे ना तो ऐसा बहुत होगा, कोई आश्चर्य नहीं। देखो
कर्तृत्व शून्य लिखना, उद्देश्य कर्तृत्व से शून्य करना है तुम्हें, ज्ञान से शून्य नहीं करना है। ज्ञान के को भी कर्तृत्व जैसा ही लगाओगे तो ज्ञान शून्य हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब जब इसको पढ़ो हम तो ज्ञान मान पढ़ेंगे ना तो हम गुनगुना के छंद लिखते हैं तो वो उसमें गड़बड़ी नहीं आएगी। हम पढ़ते शांति सत्स्वरूप भाव नहीं जात व्यापक बने समय न कदापि वह असत स्वरूप भाव में कर्ता कर्म भाव का बने न असंभव है जात व्यापक भाव संबंध के अभाव में इसे भांति प्रबल विवेक दिन कर सही अंधकार ज्ञान भाव में कर चित्त भार से शून्य शोभायमान मेरे भार मन आनंद स्वभाव में तुमको लगा कि तुम्हारे बोलने में क्या होता था कि कर्ता कर्म भाव बनना असंभव है ये नहीं बोल सकते क्योंकि कहीं ज्यादा दूर पड़ जाता है कहीं कमजोर हिस्स की जगह दीर्घ का उत्पादन हो जाता है फिर दीर्घ की जगह हिस्स हो जाता है उसकी वजह से सब गड़बड़ होती है। अब एक जगह और बड़े शांति से अभी यहाँ दिक्कत हो रही ना आपको का आप नहीं चल रहा है का ज्यादा लग रहा है करता कर्म भाव का बनना असंभव है ये नहीं बोला जाता है का ज्यादा लगता है कर्ता कर्म का बनना असंभव है ना? एक वो जब ज्यादा लगता है तो क्यों तो तुम ज्यादा समय लगाते हो यदि कम समय लगाओगे उसमें तो वो पूरा बन जाओ। उसमें क्या है इसमें कि एक एक पंक्ति में आठ आठ सोलह सोलह मात्राएं होती है इकतीस सवैया है ना तो पहली में होती है सोलह दूसरे में होती है पंद्रह तीसरे में पंद्रह और सोलह ऐसी मात्रा होती है। एक मात्रा ज्यादा बोल दी छोटे आ का बड़ा आ बोल दिया वह कांति बड़े आ का छोटा आ बोल दिया तो वह कांति कि उतना जितना समय ज्यादा लगा दिया आगे जाओगे तो वो समय कम पड़ जाएगा। यदि तुमने कम लगाया या समय नहीं लगाया तो आगे जाओगे तो फिर वो शांति से करना शांति मैंने आपके अधिक से शांति से भी बैठ के व्याप व्यापक भाव तत्स्वरूप में ही होता है। ये तत्स्वरूप क्या होता है? हम जो वस्तु है वह उही रूप उसका नाम है तत्स्वरूप। ऐसा समय हो जाएगी कल मैं ऐसी देखे